यूक्रेन और रशिया के बीच लगातार कई दिनों से लड़ाई जारी है और इस लड़ाई को लगभग एक महीना हो चुका है। पिछले कई दिनों में रशिया का यूक्रेन पर हमला और तेज हो गया है। रशिया यूक्रेन पर लगातार मिसाइल, रॉकेट और हवाई हमले कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई और इलाके इन हमलों से तबाह हो रहे हैं। वहीं एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यूक्रेन को रशिया के खिलाफ संघर्ष में मदद करने के लिए अपनी सहायताओं को बढ़ाने का ऐलान किया है और इन सहायताओं में शामिल है मानवीय सहायता, कोयला और हथियारों की सप्लाई। ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को मानवीय सहायता में $30 मिलियन और सैन्य सहायता में $21 मिलियन प्रदान कर रहा है। यूक्रेन से भागकर आने वाले लोगों को ऑस्ट्रेलिया अब अस्थायी मानवीय वीजा भी देगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवा, काम और अध्ययन अवस्था तक पहुंचने की अनुमति भी मिल जाएगी। सिडनी में यूक्रेनी समर्थकों ने रशिया के आक्रमण के खिलाफ रैली की। इनमें यूक्रेन की शरणार्थी यूलिया डुडुरा की बहन और भतीजी भी शामिल हैं। उन्होंने बताया,
every day, every hour, we had a very big stress, so we can't even do anything. We just was trying to take everyone from my family, but it's really hard.
अब यूक्रेन के नागरिकों के परिवारों के लिए कुछ राहतें हैं, क्योंकि सैकड़ों विस्थापित रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। फेडरल सरकार ने घोषणा की है कि वह ऑस्ट्रेलिया आने वाले यूक्रेनियों को अस्थायी मानवीय वीजा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि यह 3 साल के लिए वैध होगा और लोगों को काम करने, अध्ययन करने और मेडिकेयर तक पहुंचने की अनुमति देगा।
In order to support those 5,000 already visited Ukrainians to come to Australia, and they are coming across a range of different visa programs. They are coming on skilled visa programs, on family programs, they're coming on student visas, they're coming on tourist visas. In all of these cases, when they arrive in Australia, we will make available to them a temporary humanitarian visa. This visa will be valid for a period of 3 years. They will have the opportunity and be invited to apply for other longer term visas should they wish to do so.
Australian Federation of Ukrainian Organization का कहना है कि वह राष्ट्रमंडल के मानवीय समर्थन का स्वागत करता है। इस फेडरेशन का कहना है कि वीजा अवस्था यूक्रेनियन लोगों को यूक्रेन से निकलने में मदद करेगा और समुदाय आधारित टीमें प्रत्येक राज्य और क्षेत्र में विस्थापित लोगों की सहायता करेगी। इसी को लेकर ऑस्ट्रेलियाई समुदाय समूहों से अस्थायी आवास, घरेलू सामान, कपड़े और चिकित्सा सहायता के प्रस्ताव को एकत्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया गया है। इमिग्रेशन मंत्री एलेक्स के अनुसार सरकार ने उन 5,000 लोगों को वीजा जारी किया है जिनके पास ऑस्ट्रेलियाई कनेक्शन है और जो देश में प्रवेश करना चाहते हैं।
So far we've seen about 700 of those arrive, but we now know every day we will see more people coming who are in a very bad way, who need more support and assistance. I want to thank the Australian Ukrainian community for what they've done in recent weeks. Many of them have given up their jobs, they've worked around the clock. They've worked through the night with the department, with the government, to support these movements of these people.
रविवार को हुई रैली पूरे ऑस्ट्रेलिया में यूक्रेन के साथ एकजुटता में आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों में से एक थी। ऑस्ट्रेलिया में यूक्रेनी समुदाय जागरूकता बढ़ाना जारी रख रही है, जिसमें वह मदद के तौर पर डोनेशंस भी इकट्ठा कर रही है। ओल्गा वेरोनिना एक यूक्रेनी ऑस्ट्रेलियाई है जो रैली में भाग ले रही थी और ऑस्ट्रेलियाई लोगों से यूक्रेन आपातकालीन अपील कोष में दान करने का आग्रह भी कर रही थी।
We are collecting money for humanitarian purposes. We already sent 250,000 to Ukraine. We collected all up more than $2 million by now. So thank you everyone who donates.
ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मरी स्पेन का कहना है कि यूक्रेन पर रशिया का आक्रमण एक मानवीय आपातकाल का कारण बन रहा है। वे कहती हैं,
Creating the fastest growing refugee crisis since the Second World War. Currently, we see around 6.5 million people internally displaced. And a further 3.3 million having fled to neighbouring countries. More than half of those are children. That actually represents about a quarter of Ukrainians forced to leave their homes.
वहीं एलेक्स हॉक्स कहते हैं कि इन शरणार्थियों के पास ऑस्ट्रेलिया में नौकरी खोजने का भी विकल्प होगा।
When they settle in the weeks ahead, if they choose to want to go to work, and some of the people we're seeing are are doctors from major cities. They're skilled professionals. They're people who want to do something here, and they will be able to then work or study in Australia.
सैन्य सहायता की घोषणा करते हुए फेडरल सरकार ने कहा कि यूक्रेन को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल के सामान से अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि जो ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन से भागने वालों का समर्थन करना चाहते हैं, वे लोग कर कटौती डोनेशन देने में सक्षम होंगे। उनका कहना है,
They have been greatly appreciative of the help that Australia has provided and the recognition of what they're facing. But in our discussions over the last couple of weeks, they have made requests for more arms, for more humanitarian support, and they've also asked us for our coal to assist help power their resistance, to help them to deal with the energy situation and needs in their own country. And so that is exactly what we are going to do.
ऑस्ट्रेलियाई सरकार का कहना है कि वह यूक्रेन को कम से कम 70,000 टन थर्मल कोयला दान करेगी, मगर वहीं सरकार ने रशिया को एल्यूमिना और एल्यूमिनियम एसकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं। स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को अपने प्रतिबंधों में दृढ़ रहना चाहिए।
Russia must pay a very high price for its brutality. It must pay that price economically. It must pay that price reputationally. And in diplomatic terms as well. And it is indeed paying that price.
SBS News की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए।